بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين، على الخصوص على محمد سيد المرسلين والنبيين وعلى آله الأطيبين الأطهرين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. صلوات. الحمد لله، انت مومنین کے زیر انتظام اس عشرے کے حوالے سے ہم نے گزشتہ 8 تقاریر میں سیرت امام حسین علیہ السلام، پویوزات امام حسین علیہ السلام، اور ایک لحاظ سے کہیے کہ مقاصد امام حسین علیہ السلام، جو اس 6 مہینے کے سفر جو جس کا اختتام 10 محرم کو ہوتا ہے، اس 6 مہینے کے سفر میں جو کچھ بھی ہم اخذ کر پاتے ہیں، جتنا بھی معلومات ہمارے ہاتھوں میں ہیں ان کے وسیلے سے، تو ہم نے کچھ اہم بنیادی نکات آپ کے سامنے رکھے تھے، اور اس کے ساتھ ہم اس بات کی کوشش کرتے جا رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی برکت سے حاصل ہونے والے معارف کو کی روشنی میں ہم تعمیر کردار پر بھی کچھ نہ کچھ سمجھ سکیں، کام کر سکیں. تعمیر کردار کیوں بہت زیادہ ضروری ہے، اس کو ایک بار ذہن میں رکھ لیجیے گا انشاءاللہ، تو پھر اس کی اہمیت کبھی بھی آپ کے دماغوں سے زائل نہیں ہوگی. تعمیر کردار اس لیے ضروری ہے کہ ہماری شکل و صورت مرنے کے بعد، انتقال کے بعد، یعنی برزخی زندگی میں اور پھر آخرت کی زندگی میں، یہ ہمارا کردار اور اخلاق ہے کہ جو ہماری شکل و صورت کی تعمیر کرے گا. جو ہماری شکل و صورت اس وقت ہے، اس بدن کی اور جسم کی، یہ انتقال کے ساتھ اس کو مٹی میں چلے جانا ہے، یہ ختم ہو جائے گی. تو ہماری شکل و صورت کیا بنے گی، کیا باقی رہے گی، کیا آگے جائے گی، کیا اس میں بہتری یا خدا نہ خواستہ خرابی ہوگی، یہ سب کا سب ڈپینڈ کرتا ہے اس کردار پر، اس کیریکٹر پر، اس کی کوالٹی پر، اور ہمارے خلق کی حسن یا قبح پہ. تو اس وجہ سے تعمیر کردار وہ فریضہ ہے کہ جس کو کوئی بھی مسلمان ایک لمحے کے لیے بھی اپنی لائف میں اگنور نہیں کر سکتا. तो इसी बिना पर हम जो कुछ भी बात करें, जो कुछ भी सीखें, जो कुछ भी समझने की कोशिश करें, तो उसमें ये जरूरी आपके मद्देनजर होना चाहिए कि उन तमाम चीजों से, यानी जहां पर भी आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इबादत के हवाले से या दीगर उमूर के हवाले से, तो उसमें आप इस बात का हिसाब जरूर रखें कि उन तमाम एक्टिविटीज में आप क्या बन रहे हैं, आपके अखलाक और किरदार की तामीर किन खतूत पर हो रही है, किन लाइंस पर हो रही है। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम आपके साथ गुफ्तगू, जिस हद तक हमें खुदा ने तौफीक दी है कि गुफ्तगू को आगे ले जाने की और ज्यादा से ज्यादा रोशन करने की आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, और इस बात की मैं बार बार आपसे फरमाइश कर रहा हूं कि अगर कोई भी बात, क्योंकि मुझे इस बात के अच्छे तरीके से अंदाजा है कि वक्त की महदूदियत और उसके बाद जो कॉन्स्ट्रेंट्स हमारी गुफ्तगू पर अप्लाई हो रही है, उसकी वजह से यकीनन ट्रांसमिशन ऑफ कंसेप्ट्स में एक रुकावट है, तो उसको दूर करने के लिए ये बहुत फायदेमंद होगा कि अगर आप अपने सवालात रेज करें या चीजों को किसी ना किसी तरीके से डिस्कशन में लाएं, इंशाअल्लाह। अच्छा, हमने आपके सामने अब तक काफी सारे वाकयात भी बयान किए, इमाम अलैहिस्सलाम की सीरत के हवाले से कुछ नुकात भी सामने रखे, जिसमें दो बुनियादी चीजें हमने रखी कि पहली थी अमर बिल मारूफ व नहीं अल मुनकर, और उसको हमने आपके सामने उसके मीनिंग को, उसके मुख्तलिफ अरकान को हाईलाइट किया, और फिर दूसरे मरहले पर हमने ये बात आपके सामने रखी कि इमाम ने मुसलसल लोगों को बुलाया है अपनी नुसरत के लिए, और इमाम की नुसरत जो है वो दर हकीकत दीन की नुसरत है, और दीन की नुसरत जो है वो खुदा की नुसरत है। तो ये तलब नुसरत भी इमाम अलैहिस्सलाम के इस कयाम का एक इंतहाई अहम पहलू है, और उसमें भी हमने आपके सामने ये बात वजाहत से बयान की कि तारीख करबला हमें जो कुछ बताती है उसकी रोशनी में इमाम अलैहिस्सलाम के साथ इंटरेक्ट करने वाले लोगों की मुख्तलिफ क्लासेस हमको नजर आती, और इंशाअल्लाह ताला आज मैं कोशिश ये करूंगा कि हमने जो सारी गुफ्तगू की है ना, उसके में अगर कहीं से कोई गैप्स हैं या लूज एंड्स हैं तो उनको टाई अप कर दूं, के ताकि ये दो नुकात, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, और तलब नुसरत के अंदर जो हमने बातें, गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की है, तो वो आपके सामने एक अच्छी तस्वीर बन जाए, एक आप उसको विजुअलाइज कर पाए अच्छे तरीके से कि ये क्या मामला है। तो इस पे जब हम बात कर रहे हैं, यानी इस तमाम चीजों को सम अप करने की, कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने कंसेप्ट को, तो हम इसको दो हवालों से देख सकते हैं, एक इमाम और इमामत का किरदार, और दूसरा इमामत के मुकाबले में मुसलमानों की रिस्पॉन्स और मुसलमानों का किरदार, कि इमाम क्या रोल प्ले कर रहे हैं, इमाम किस किस्म की शख्सियत और पर्सनालिटी की सूरत में लोगों के सामने आ रहे हैं, अपने आप को किस तरीके से लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, और उसके जवाब में लोग क्या कर रहे हैं। तो इन दोनों चीजों को मद्देनजर अगर हम रखेंगे, आमने सामने रखेंगे, तो हमें इंशाल्लाह फिर एक कंप्लीट जो निजाम है हिदायत का और इमामत का, वो इंशाल्लाह समझने में हमको खासी आसानी हो जाएगी। अच्छा, इमामत का किरदार या इमाम, और जैसा मैंने अर्ज किया कि इमाम, इमामत का सिलसिला बहुत पुराना है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से चल रहा है। इमाम अली को हम पहला इमाम कहते हैं बतौरे औसिया रसूल खातम, न कि इमाम अली तारीख इंसानियत के पहले इमाम है, ये बात जहन में रखिएगा, क्योंकि नस्से कुरान मौजूद है, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خدا نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، اور وہ ہم آپ کو بتا چکے کہ جو امام خدا مقرر کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے، اس کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، اس کی معموریت کیا ہوتی ہے، رسپانسبلٹیز کا دائرہ کار کیا ہوتا ہے. تو جب ہم امام، خاص طور سے امام حسین علیہ السلام کو فوکس میں رکھتے ہوئے ہم بات کریں امامت کی، تو امام کا پہلا جو صفت ہے، اور یہاں پر میں لفظ صفت استعمال کر رہا ہوں تو یہ بھی دماغ میں رکھیے گا کہ بہت بہترین جو تعریف ہے، شاید رسول اور امام کی بہترین تعریف یہ ہے کہ وہ عالم خلقت میں صفات الہی کا جلوہ ہے. اگر ہم رسول اور امام کی تعریف، ان کو بتانا چاہیے کون ہوتے ہیں، یہ رسول اور امام کون ہوتے ہیں، پیغمبر کون ہوتے ہیں، تو اس کی بہترین تعریفوں میں سے ایک تعریف یہ ہے کہ عالم انسانیت اور عالم خلقت میں وہ ہستی جو صفات خداوندی کو پرفیکٹلی پاسبل وے میں منعکس کرتی ہے، ریفلیکٹ کرتی ہے، مینیفیسٹ کرتی ہے اپنی ذات سے، وہ ہستی رسول اور امام. تو اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو امام کا جو سب سے پہلا رول ہے وہ کیا ہے، وہ ہے ہادی، ہدایت کرنے والے. کیوں ہدایت کرنے والے؟ ہدایت کرنے والے اس لیے کہ انسان ایک حالت سفر میں ہے، اور جب آپ حالت سفر میں ہوتے ہیں تو آپ کو ڈیفینیٹلی گائیڈنس کی ضرورت ہے. تو وہ گائیڈنس پرووائڈ کرنے والی ہستی خدا کی جانب سے کون ہے انسانوں کے لیے؟ رسول اور امام. لیکن یہاں پر ہدایت کی تعریف بھی، اب میرے لیے موقع نہیں ہے کہ میں تمام ڈیفینیشنز کو بالکل تفصیل سے بیان کرتا رہوں، تو میں انشاءاللہ آپ کے لیے اشارے ضرور کرتا چلا جاؤں گا، اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو یہ باتیں پہلے سے معلوم نہیں ہیں، لیکن مجھے یہ امید ضرور ہے کہ اس میں کئی نئے نکات اور نئے پہلو آپ لوگوں کے سامنے ضرور آئیں گے کہ ہدایت کا مطلب کیا ہے، ہدایت کس کو کہتے ہیں، اور نبی اور رسول اور امام کی ہدایت کیا ہوتی ہے حقیقتاً. جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان کا جو سفر ہے وہ دنیا سے آخرت تک کا سفر ہے، یا انسان کا جو سفر ہے وہ اسفل السافلین سے اعلی علیین تک کا سفر ہے، یا انسان کا سفر اس مخلوقات سے لے کر لقاء اللہ تک کا سفر ہے. مختلف طریقوں سے آپ اس سفر کو بیان کر سکتے ہیں. تو امام کا کام یہ ہے خاص طور سے کہ وہ ہمیں سفر کے اس ڈائمنشن کے بارے میں آگاہ کریں جو ہم ظاہر کے بیونڈ ہیں، ہماری ظاہری نظروں کے بیونڈ ہیں. کیونکہ جیسے اگر ہمارا سفر دنیا سے آخرت تک کا سفر ہے، تو اس کا ایک فیز جو ہمارے سامنے ہے کہ ہم دنیا میں پیدا ہو کر انتقال کر جائیں گے، یہ ایک فیز ختم ہو گیا جو کہ امتحان کا فیز ہے. لیکن سفر نہیں ختم ہو گیا، بلکہ سفر وہاں سے اور بہت آگے تک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں برزخی زندگی ہے، پھر قیامت میں دوبارہ اٹھنا ہے. تو وہ سب کیسے طے ہو، اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہوں؟ تو امام علی علیہ السلام کے ایک جملے سے میں استفادہ کروں کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ اس بندے پر، اس شخص پر رحم کرے کہ جو اس بات کا علم رکھتا ہو کہ کہاں سے آیا ہے اور کدھر جا رہا ہے، من عینہ و الی عینہ، کدھر سے آیا ہے اور کدھر جا رہا ہے، یہ ہدایت ہے اصل میں. کہ انسان کو اس بات کی معرفت اور شعور حاصل ہو کہاں سے آیا ہوں، کدھر ہوں، کیوں ہوں، کیا کرنا ہے اور کدھر جا رہا ہوں، اور جدھر جا رہا ہوں وہاں پر فلاح یافتہ ہونے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا، یہ ہدایت ہے. जिस हिदायत को नबी और इमाम फोकस करते हैं। यानी वो ठीक है कि आप कहें कि जी हिदायत का मतलब ये है कि आप लोगों को ये बता दें कि नमाज कैसे पढ़ी जाए या इबादत कैसे की जाए, वो उसके अंदर आती है, वो सारे उसके सबसेट्स हैं, उसके मातहत। लेकिन हकीकी हिदायत ये शऊर व मारिफत है, मिन आईना व इला आईना, और किधर हूं, क्या कर रहा हूं, क्या करना है। एक पहला रोल इमाम का है हिदायत, और इमाम हादी इस सेंस में नहीं होता कि खाली हमें ये बता दे या टीच कर दे, बल्कि इमाम इस सेंस में हादी होता है कि अगर हम अपना हाथ उसके हाथ में दें तो वो हमारा हाथ पकड़कर हमें पूरा रास्ता भी तय करा दे। और रास्ता तय कराने के लिए जो असल तरीका है इमाम का, वो क्या है? नुफूस का तज़किया और तरबियत, जिसको हम कहते हैं कि इमाम क्या है? मुरब्बिये नुफूस है। इमाम जो है वो हकीकतन नुफूस की तरबियत करने वाले हैं, नुफूस के रब हैं। और नुफूस की तरबियत उसी वक्त बेहतरीन तरीके से हो सकती है कि जब हम अपने आप को उनके हाथ में दें और जिस तरीके से वो हमें फिर हम पर ऑपरेट करें, फिर उस पर शिकायतें ना करें, क्योंकि वो बेहतर जानते हैं, वो बेहतर समझते हैं। जो मुरब्बी है, जो बनाने वाला है, संवारने वाला है, वो बेहतर जानता है कि किस नफ्स को किस रास्ते गुजारना, किस रास्ते लेके चलना। तो इमाम का दूसरा रोल जो हमें खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस सफरे करबला में नजर आता है कि इमाम हुसैन ने लोगों की जो आपके साथ हुए फकत हिदायत नहीं की, बल्कि उनके नुफूस की कार्विंग और उसको ऐसा संवारा और निखारा और तराशा कि वो नुफूस जो रॉ कंडीशन में थे वो हीरा बन गए, हीरा, कीमती हीरा बन गए खुदा की बारगाह का। तो इमाम का काम क्या है? मुरब्बी नुफूस। इमाम का काम क्या है? हिदायत। और तीसरा पहलू के जो बहुत बहुत हमारे लिए तश्वीक आमेज है और बहुत हौसला अफजा है, इमाम जलवे रहमत खुदा है। इमाम की जात में जो चीज सबसे ज्यादा झलकती है वो रहमत खुदाबंदी का जलवा है। और रहमत खुदाबंदी का जलवा का मतलब ये है कि इमाम अलैहिस्सलाम की जात गिरामी किसी को रिजेक्ट नहीं करती। आप कभी मेरे जुमले पे गौर कीजिएगा कि रसूल खुदा के बारे में हम लोग बाज़ोकात बड़े शिकवे करते हैं, इसको अपने पास क्यों बिठा लिया, उसको क्यों बिठा लिया, इनको निकाल बार क्यों नहीं किया, इनसे जान क्यों नहीं छुड़ाई। ये रसूल और इमाम का काम नहीं है। रसूल और इमाम जो मसनवी मौलाना रोम में एक जुमला है कि तू बराए वसल करदन आमदी, कि हमने आपको विसाल के लिए भेजा है न कि फिसाल के लिए। वसल यानी मिलाना और फसल यानी अलग अलग कर देना। रसूल और इमाम जिस तरीके से इंसानियत में रहते हैं कि जो जितना चल सकता है, जिसमें से जितनी बेहतरी निकल सकती है, बरामद हो सकती है, उसमें से निकाल। जैसे कल अगर मैंने आपको वो वहाग बिन अब्दुल्ला मिशरकी वाला वाकया सुनाया था, हो सकता है वो आपको अजीब सा लगे और यकीनन आपको ऐसा मतलब गुस्सा था आया होगा कि जब बिल्कुल इमाम अलैहिस्सलाम तन्हा हैं और शहादत के नजदीक हैं तो वो शख्स कह रहा है मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अब मुझे रुख्सत की इजाजत है। लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम उसको भी रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। और जैसा कि शेख मुफीद की रिवायत है कि ये शख्स बाद में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के पास भी आता रहा, यानी ये वो नहीं था, ये कोई दुश्मनों में से नहीं था, ये बदखाहों में से नहीं था, लेकिन इसका आप इसने अपने एक दिमाग का मुजाहरा किया, इमाम ने इसको बाहर नहीं निकाला। और मैं इंशाल्लाह अभी इस पर बात करता हूं जब हम उन लोगों के रेस्पॉन्सेस की तरफ आते हैं। तो आपको तीन बातें समझ में आ गई, बाकी आप इसमें और ऐड करें कि इमाम हादी है, इमाम मंजिल तक पहुंचाने वाला है अगर आप अपना हाथ उसके हाथ में दे दें, इस हवाले से इमाम मुरब्बी नफूस है, नफूस का तज़किया करने वाला है, और इमाम जलवे रहमते खुदा है। और जिस तरीके से खुदा की रहमत काफिर और मुशरिक से रिज्क को नहीं रोकती है, इसी तरीके से इमाम की भी इनायतें किसी नाशुक्रे को अपने दर से दूर नहीं करती हैं। इमाम जलवाए रहमत खुदा है, और काश अल्लाह ताला हमें भी यह तौफीक इनायत करे कि हमारे ज़र्फ में भी इतनी वसाहत पैदा हो। और एक खास बात और कि जो हमने जनाब कुमैल के हवाले से आपसे खिदमत में अर्ज की थी कि जिसमें इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि ऐ कुमैल, यहाँ पर इल्म का एक जखीरा है, एक समंदर है, लेकिन कोई मुझे ऐसा नजर नहीं आता कि जिसके ऊपर इसको रख सकूं। ऊपर रख सकूंगा क्या मतलब है कि इल्म का बोझ उठाना पड़ता है। इल्म खाली कुछ बातों का नाम नहीं है, इल्म दर हकीकत हकायक के तहम्मुल का नाम। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं मुझे इसका बोझ उठाने वाला कोई नहीं मिलता। और जो कल मैंने आपको बताया कि आप फरमाते हैं कि तीन किस्म के लोग ज्यादा हैं जो मेरे सामने, मैं इसमें एक और आपके सामने वाकया रखूं क्योंकि इसमें एक बड़ा अच्छा हमारे अमल के लिए भी एक बड़ी अच्छी चीज है। जनाबे मैसमे तम्मार, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है ये नाम, के वो जो मुखलिस तरीन असहाब इमाम अलैहिस्सलाम को नसीब हुए हैं, यानी तीनों आइम्मा को, इमाम अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तो उनमें से मुखलिस तरीन और बुलंद मेयार इनका बहुत ज्यादा है जनाब मैसम का। मैसम खुद रिवायत करते हैं कि एक रात में इमाम अली अलैहिस्सलाम मुझे लेते हैं, आबादी से बाहर निकलते हैं, एक मस्जिद है वहां तक पहुंचते हैं, और फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम वहां पर 4 रकत नमाज, मैं चाह रहा था कि ये एक अमल है जो छोटा सा अमल है लेकिन बहुत खूबसूरत इसमें है, तो ये भी आप नोट कर लें और अगर चाहे तो इस पर अमल भी करें कि इमाम अली अलैहिस्सलाम वहां पर क्या करते हैं, 4 रकत नमाज पढ़ते हैं। 4 रकत नमाज अदा करने के बाद ये दुआ पढ़ते हैं। इस दुआ की खातिर मैं इस रिवायत को हकीकतन नकल कर रहा हूँ कि आप ये फरमाते हैं, इलाही कैफा अदऊ का वक़द अफ़ैतु का, ऐ मेरे खुदा मैं तुझसे कैसे दुआ करूं जबकि मैं तेरी बारगाह में मासीयत कार हूं, गुनाहगार, क्योंकि जो गुनाह मासीयत तेरी नाफरमानी करने वाला, मैं कैसा किस मुंह से तुझसे दुआ करूं। वकैफा ला अदऊ का वक़द अरफ्तु का, और मैं क्यों कर तुझसे दुआ न करूं जबकि मैं तेरी मारिफत रखता हूं, तुझको पहचानता हूं। मैं जब तेरे बारगाह में दुआ के लिए हाथ फैलाता हूं तो अब मेरी मासीयत रुकावट बन के सामने आ जाती है, लेकिन मैं क्यों कर तुझसे ना दुआ करूं और किसी और के पास चला जाऊं जबकि मैं तेरी मारिफत रखता हूं कि तेरे सिवा किसी और दर से हाजत पूरी नहीं होती। वहुब्बुका फी कल्बी मकीनुन, ये बहुत खूबसूरत है, वहुब्बुका और तेरी मोहब्बत मेरे कल्ब में मकीन है, ये शिया अली का रुतबा दर्जा होना चाहिए। तेरी मोहब्बत मेरे कल्ब में मकीन है, मकीन क्या होता है, रेजिडेंट, योर लव इज रेजिडेंट इन माई हार्ट, तेरी मोहब्बत मेरे कल्ब में मकीन है। मदद तो इलई का यदा, या मैंने अपने दोनों हाथ तेरी बारगाह में फैला दिए हैं, बिज़ुनूबे ममलूवतुन, जो गुनाहों से पुर हैं। मैंने वो दोनों हाथ तेरी बारगाह में फैलाए हैं जो गुनाहों से पुर हैं, व आइनन बिर रजाए ममदूदतन, और वो आंख जो तुझसे उम्मीद के साथ फैली हुई है जिसकी नजर। ये मुख्तसर सी दुआ। और फिर उसके बाद आप सजदे में तशरीफ ले गए और आपने 100 मरतबा अल गफूर। फिर उसके बाद आपने क्या किया, आप उससे उठते हैं, आपने जमीन पर एक लकीर खींच दी और मैसम से कहा कि इस लकीर के उस तरफ नहीं, यहीं पर मेरा इंतजार करो। फिर आप अंधेरे में कहीं चले गए। अब काफी देर हो गई, मैसम बैठे हैं, फिर उन्हें ख्याल आया कि जमाना ऐसा है कि इमाम अली के दुश्मन हैं, कहीं कोई खतरा, किसी खतरे से ना दोचार हो गए हों, कोई मसला ना हो गया हो, किसी ने अटैक ना कर दिया हो। मैसम आपकी हिदायत को नज़रअंदाज करते हुए आगे जाके ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं, क्या देखते हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम एक कुआं है और उस कुएं में आधे धड़ से आप अंदर और कुछ कह रहे हैं। जब आप उठे, जब आपने आहट सुनी, आप बाहर, आपने अपने आप को उससे बाहर निकाला और पूछा कौन, मैसम ने कहा मैं। आपने कहा मैंने तुमको मना नहीं किया था कि तुम उस लकीर से इस तरफ ना आना। कहने लगे या अमीरुल मोमिनीन, मैं बहुत माफी चाहता हूँ लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर सका कि आपको इतनी देर हो गई कि कहीं कोई हादसा ना पेश आ गया। तो फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने 3 छोटे छोटे अशार बैत आपने पढ़ी, जिसका मतलब क्या है। वैसे तो हमें बहरहाल इस मंजिल पे होना चाहिए कि कलाम इमाम से वाकई लुत्फानंदोज हो सके। वफी वफी सदरी लुबानात, मेरे सीने में क्या है। लुब का नाम आपने, लुब का लफ्ज यकीनन सुना होगा, उलुल अलबाब जो कुरान करीम ने इस्तेमाल किया ना, लुब यानी अकल वाली बात, मगज, गूदा, लुब। वफ़ी सदरी लुबानात, मेरे सीने में बहुत सारे लुब हैं, यानी उलूम की हकीकत उसके मगज इस सीने में। लहा फदरी, और जब उनकी वजह से, क्योंकि मैं उसे किसी को दे नहीं पाता हूं, कोई लेने वाला नहीं है उसका, तो जब उनकी कसरत की बिना पर मेरा सीना तंग होने लगता है, नकतुल अर्ज़ बिल कफ, मैं अपना रुख जमीन की तह की तरफ कर लेता हूं। वह अबदई तो लहा सिर्री, और जो मेरे असरार हैं वो उसमें डालना शुरू कर देता हूं। फमहमा तुम बेतुल अर्ज फजा का नब्तु मिन बजरी, के उम्मीद करता हूं कि एक वक्त वो आएगा कि जब मेरे डाले हुए बीज को जमीन उगाएगी, जब मेरे डाले हुए इन बीजों को। अब ये क्या राज है ये हमें नहीं पता, लेकिन नजफ का शायद 1000 साल का हौज इल्मिया, अल्हम्दुलिल्लाह उरफा हुकमा, ये तमाम की तमाम क्या चीज है। ये वो उसका, ये वो बीज जो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस इराक की जमीन में डाले थे ना, उस सरजमीन में जो बीज डाले थे, जाहिर है अब ये किसका मैकेनिज्म तो हमारे समझ से बाहर है कि ये कौन सा सिस्टम है कि जिसको इमाम अली अलैहिस्सलाम इन्वोक कर रहे थे। लेकिन मेरे इसके कहने का मकसद ये है, उस दुआ को बताने के अलावा, कि इमाम की नज़र में बेहतरीन शिया वो है जो इमाम के इल्म का बोझ उठाने के काबिल, उस इल्मो मारिफत जो हकीकत पर मबनी है, जो इस राह को रोशन करती है दुनिया से लेके आखिरत तक की, उसका इल्म इमाम हमको देने को तैयार है। कुरान करीम में भी ये जुमला मौजूद है रसूल पाक के बारे में कि कि हमारा रसूल जो है ना, मा हुआ अलल गैब बेजनीन, ये गैब की खबरें बताने के बारे में बखील नहीं है, अगर तुम लेने के काबिल हो, अगर तुम अपने आप को इस काबिल और लायक बनाओ, तो हमारा रसूल बखील नहीं है कि तुम्हें गैब के बारे में ना बताए, जो तुम्हारी नजरों से ओझल है, उन असरार पर से पर्दे ना हटाए। तो इस बात को ये इमामत है। अब हम क्या हैं? ये मुख्तसरन मैंने इमाम और इमामत जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के राह से हमें आपके मिसाल के जरिए से हमको नजर आ रहा है, अब उसके मुकाबले में हमें देखें, यानी हमसे मुराद मुस्लिमीन, तमाम मुसलमान। अभी हम मुसलमानों के दायरे से बाहर किसी की बात नहीं कर रहे, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जितना भी साबका पड़ा है, 28 रजब से लेकर 10 मुहर्रम और 10 मुहर्रम के बाद अहले हरम के साथ जो कुछ भी हुआ है, वो सब मुसलमानों से हुआ है उसमें, और दूसरे लोग कोई भी इन्वॉल्व नहीं था जाहिरन। ठीक, तो अब उसमें मैं आपको 5-6 कैटेगरीज बना के बता देता हूँ, और आप उसमें अगर और सोच सकते हैं और समझ सकते हैं तो आप भी बताइए। कि पहली कैटेगरी जो हमारे सामने आती है, वो समझ लें कि इस्लामी माशरे के एलीट या हाई प्रोफाइल लोग हैं। हाई प्रोफाइल लोग कौन हैं, कहाँ पर थे, या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो भी हाई प्रोफाइल लोग हैं वो होंगे कि जो रसूल खुदा से किसी न किसी तरीके से कुर्बत रखते होंगे, यानी आपके असहाब, आपके घर वाले, और फिर उनके डायरेक्ट डिसेंडेंट्स, जिनको वैसे कहा जाता है ताबेईन या तबे ताबेईन, क्योंकि 60 हिजरी में रसूल खुदा के विसाल को 50 साल हो चुके थे, तो यकीनन सेकंड थर्ड जनरेशन आ गई थी मुसलमानों में हुजूर के बाद। ये एलीट क्लास कहाँ पर थी? मदीने में थी और मक्के में थी, ये वो लोग थे। इनमें से कितने अफराद ऐसे थे कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात को समझ पाए हों, या आपने 50 से 60 हिजरी के दरमियान जितना लोगों को आमादा किया बनू मैया के खिलाफ, उसको कबूल कर पाए हों? तकरीबन कोई भी नहीं। यानी हम जितना भी अहले कूफा की बुराइयां बयान करें, लेकिन इमाम हुसैन का साथ देने और शहीद होने वालों की अक्सरियत कहां से थी? वहीं से थी। ये हबीब और मुस्लिम और जुहैर और हिलाल इब्ने नाफिर, ये सब कहां से थे? कूफे से थे। मदीना और मक्का, दे वर जस्ट साइलेंट। जो बड़े बड़े उनके लोग थे वो आए आगे, उन्होंने जैसे कुछ नाम आते हैं, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का नाम आता है, खुद जनाब मोहम्मद इब्ने हनफिया का नाम आता है, और जाहिर है इसके बारे में उलमा में इख्तलाफात भी हैं, वो हम उसमें नहीं जाना चाहते, लेकिन ये कि उनमें से कोई भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ करबला में शहीद नहीं हुआ, ये एक आप समझ लें कि अच्छा। और इसमें एलीट क्लास होने का एक फायदा ये होता है कि उनको एक इंडेमनिटी या प्रोटेक्शन सी मिल जाती है, यानी जैसे यजीद को भी ये बात अच्छे तरीके से समझ में आती थी कि इन लोगों पर हाथ नहीं डालना, वरना मेरे लिए प्रॉब्लम ज्यादा खड़ी हो जाएंगी। और एक लिहाज से अगर आप देखें कि अगर जाहिरी एतबार से देखें, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीने और मक्के से बाहर निकलकर उसको ये मौका दिया है, उसको मौका दिया है कि वो हमलावर हो सके, वरना वो बात जो लोग कह रहे थे कि आप मदीने में रहें, गलत नहीं कह रहे थे कि आप यहाँ पे रहें तो सेफ रहेंगे, लेकिन मसला क्या है कि इमाम अलैहिस्सलाम तो किसी और चीज की तरफ जा रहे थे, उनके उनके सामने जो अमर था वो तो अमरे इलाही का अहिया था, उनके सामने जो काम था वो तो हकाएक खुदाबंदी को रोशन करना था, उम्मत के लिए अपनी जान बचाना थोड़ी था। लेकिन ये बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी। ये एक किस्म के लोग हो गए। दूसरे किस्म के लोग कौन थे? अहले कूफा। अहले कूफा को हम किस कैटेगरी में डालें? बहुत मुश्किल है कि उन्होंने जब 12,000 खतूत लिखकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में रवाना किए, क्या वो सारे के सारे मुनाफिक थे, झूठे थे? ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो 12,000 खतूत जो थे वो झूठ और मुनाफिकत पे मबनी थे या धोखे पे मबनी थे, ऐसा नहीं था। फिर उसके बाद क्या हो गया? जब उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद आया और उसने एक दहशत का बाजार गर्म किया, फिर ये सब के सब कहाँ चले गए? और उनमें से एक तादाद, अच्छी खासी तादाद, फिर इमाम को कत्ल करने के लिए करबला में आ गई। ये काया कैसे पलट हो गई? तो इसको हम यही बात समझ सकते हैं जो कल मैं आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो जुमला सुना रहा था कि जो आपने फर्जदक से फरमाया था कि बेशक इंसान दुनिया के गुलाम, यानी ये वो लोग हैं बनी इसराइल जैसे जो हजरते मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, जिन्होंने सब कुछ देखा और सब कुछ देखने के बाद सामरी के गौसाले की बछड़े की परस्तिश भी की, यानी बेमारिफत और ज्यादातर अपने मतलब के पीछे जाने वाले लोग। और यहां पर मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि जो भी सामेईन हैं, कि इसका जवाब मुझे बताएं कि क्या हम अपनी जिंदगी में मारिफते हक और तज़किए नफ्स के बगैर कामयाब हो सकते हैं? ये जो भी करबला के अंदर हमको चीजें नजर आ रही हैं, क्या मारिफत और तज़किए नफ्स एक लाजमी इंग्रेडिएंट है या नहीं कामयाब होने के लिए, या इसके बगैर भी काम चल सकता है और इसकी कोई खास अहमियत नहीं थी? ये इसका सोच के मुझे जवाब बताइएगा। एक ये ग्रोह है अहले कूफा के, जिनको आप कह लें कि जज्बात में आगे बढ़ के आए, लेकिन क्योंकि मारिफत नहीं थी, क्योंकि किरदार की मजबूती नहीं थी, क्योंकि नफूस में तहारत नहीं थी, जहां सख्ती और मुश्किल आई ये एवेपोरेट हो गए, खत्म हो गया इनका सारा ईमान। ये दूसरा। तीसरे वो लोग हैं जो उबैदुल्ला इब्ने हुर्र जाफी जुआफी जैसे लोग हैं। ये कौन लोग थे? ये इमाम हुसैन के मुखालिफिन नहीं थे, ये किसी भी कीमत पर इमाम हुसैन से नबर्द आजमा आपके मुकाबले में आके खड़े नहीं होना चाहते थे, लेकिन इनकी नजर में दीन के लिए कुर्बानी देना माली कुर्बानी से आगे नहीं। आप मेरा नैजा ले जाइए, मेरा घोड़ा ले जाइए, जो कौन सी कुर्बानी, क्या चीज हदिया करना है? माल हदिया करना है। लेकिन बात अगर जान पर आ रही है, अगर उससे आगे बढ़ के अपने असासे और दौलत और वो तमाम चीजें कुर्बान करने की बात आ रही है, तो आई एम सॉरी, फिर मैं नहीं चल सकता, मेरे लिए मुश्किल है। ये तीसरी कैटेगरी हो गई कि जो दीन के लिए क्या देने पर तैयार रहते हैं, माल, माली एतबार से खिदमत के लिए तैयार रहते हैं, उसके आगे मुश्किल है। चौथे किस्म के लोग कौन हैं जिनकी मिसाल हमने दी? वहाड बिन अब्दुल्ला मशरकी जैसे लोग, कि वो इससे आगे बढ़ते हैं, वो आगे बढ़ के कहते हैं कि ठीक है, हम आपका साथ देंगे, हम आपके लिए तकलीफें भी उठाएंगे, हम दिक्कतें दुश्वारियां भी उठाएंगे, लेकिन उसकी एक लिमिट, यानी कि आप अगर सही है, कामयाब अगर आप हो रहे हैं और आपको बेनिफिट हो रहा है, तो हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन मैं अपनी जान आप पर इसलिए नहीं कुर्बान कर सकूंगा कि मेरे दीगर मामलात भी हैं। उसने क्या कहा था कि मैं कर्जदार हूं और अयालदार हूं। हमें ये सब बातें अजीब सी लगती है ना सुन के, लेकिन कभी ठंडे से बैठ के गौर करें, ये सारे किरदार खुद हमारे अपने अंदर है। ये इन बातों को मैं बिलावजह नहीं आपके सामने बयान कर रहा हूं, खाली एक कहानी के तौर पर। ये चौथा किरदार कौन सा सामने आता है कि जो इमाम का हुज्जते खुदा का साथ देने पर आमादा है, तैयार है, कई कदम आगे जाता है, लेकिन उसके बाद कहता है कि भाई इससे आगे जो है ना, अब मेरी लिमिट खत्म हो चुकी है, अब मैं इससे आगे आपके साथ नहीं चल सकता हूं। और वो लिमिट क्या, मेरी लिमिट कहाँ पे खत्म हो गई है कि जहां से मेरा अपना फैमिली या दीगर मेरे जो मामलात हैं वहां मैं अभी कुर्बान नहीं कर सकता हूं। चार, उसके बाद पांचवी किस्म वो थी जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस पूरे करबला के तनाजुर में हमारे सामने आती है। पांचवी कैटेगरी, वो कैटेगरी वो है कि जो हकीकतन दुनिया के बंदे हैं, ठीक है, इसको फर्क को जहन में रखिएगा। अहले कूफा अबीदुद दुनिया है और ये लोग अब्दुद दुनिया है। अबीद यानी गुलाम, वो दुनिया के गुलाम हैं, ये दुनिया के बंदे हैं, यानी उसकी परस्तिश करते हैं। दुनिया, जैसे मैंने कहा था ना, अब्द और अबीद का फर्क है, गुलाम और बंदे का फर्क है। ये दुनिया के बंदे हैं लेकिन दीन इन्होंने अपने हाथ मुंह और आस्तीन सब पर उड़ा हुआ है। पूरी कोटिंग, दीन की पूरी कंप्लीट कोटिंग इनके वजूद पर है। ये कौन लोग हैं? ये उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद और उमर इब्ने साद जैसे लोग हैं कि आप अगर इनकी बातें सुनेंगे, आप अगर इनके कलेमात को इवन अभी भी जो तारीख में मौजूद हैं, जैसे मैं बार बार कहता हूं, नाम हटा दीजिए, नाम हटा दीजिए कि ये बात किसने कही है, और फिर मुझे पहचान के बताएंगे ये कौन है जो ये जुमले कह रहा है। कि कुरान की आयतें भी हैं, बाकायदा सारे वो रेफरेंसेस भी हैं, सब कुछ मौजूद है, और ये जितना किताल हो रहा है ये किस बिना पे हो रहा है कि नऊज़ुबिल्लाह अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल व उलिल अम्रे मिनकुम की आयत के मातहत ये किताल हो रहा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। इमाम वक्त, इमाम आदिल के खिलाफ बगावत हुई है जिसको खत्म करना तुम सब पर वाजिब है। ये वाली कहानियां भी आज भी चल रही हैं इस किस्म की। ये पांच कैटेगरीज हो गई। और फिर छठी किस्म वो है कि जो लोग के अगर, यानी मैं अपने नाकिस फहम के मुताबिक अगर मैं उनकी सिफात को जमा करूं, और थोड़ा सा मैं इंशाल्लाह कुरान करीम से भी बयान करूंगा कि जो मारिफत हक, मोहब्बत खुदा, दयानत, तहारत नफ्स और लिकाए रब की खातिर इमाम का साथ देने पर आमादा हुए थे, ये छठी कैटेगरी में। और आप यकीनन समझ ही गए हैं कि कौन है, कि ये हजरात। और इसमें बस मैं जल्दी से दो रेफरेंसेस देकर आपके लिए फिर बात खत्म करता हूँ कि एक रेफरेंस आप नोट करें और इसको देखिएगा मजलिस के बाद। ये खुतबा नंबर 180 है नहजुल बलागा, खुतबा नंबर 180 180 नहजुल बलागा, और ये शायद इमाम अली अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका का आखिरी खुतबा है, क्योंकि इसके आखिर में ये लिखा है कि इस खुतबे के इरशाद करने के एक हफ्ते के बाद आपकी शहादत हो गई। शायद ये आखिरी खुतबा है कि जिसमें आपने 10,000 सिपाहियों को वो किया था फिर बनू उमैया से जंग करने के लिए। इसके कुछ जुमले देखें आप। कि जिसमें इमाम अली अपने कुछ असहाब के बारे में बात करते हैं, जिससे आपको पता होगा कि ये छठी कैटेगरी कौन है। आप फरमाते हैं, मा जर्रा इख्वानना लजीन, कि हमारे वो भाई के जिनके खून को सिफीन में बहाया गया, उनके लिए ये शहादत कत्ल हो जाना किसी भी नुकसान का सबब नहीं था। उनके लिए कोई नुकसान नहीं है कि वो आज जिंदा नहीं। अगर वो जिंदा होते, क्या जिंदगी है? इस जिंदगी में गुस्से के घूंट पी रहे होते और हयात दुनियवी का मुकद्दर और गंदला पानी पी रहे होते। आप देखिएगा, मैं उसके एक एक लफ्ज पे नहीं जाता वरना वक्त निकल जाएगा आपसे। उनके लिए कोई नुकसान नहीं है जिनका खून बहा दिया गया सिफीन में, और उनके सरों को काटकर उनके दुश्मनों के पास रवाना कर दिया गया। वल्लाही वल्लाही लकुल्लाही, खुदा की कसम, उन्होंने खुदा से मुलाकात की। ये जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लिका अल्लाह की बात कर रहे हैं, मैं उसी रेफरेंस में आपको बयान कर रहा हूं। वल्लाही, खुदा की कसम, लकुल्लाही, कि उन्होंने खुदा से मुलाकात की, फवफाहुम उजूरहुम, और खुदा ने उनके उजूर को, अजर को नहीं, उजूर प्लूरल, पूरा पूरा उनके हवाले कर दिया। वह अहल्लहुम दारल अमन बादा खौफिहिम, और उनके खौफ के बाद उनको हमेशा हमेशा के अमन के रहने वाले घरों में पहुंचा दिया। और फिर आपने कुछ नाम भी लिए हैं, ऐना अम्मार, अम्मार यासिर, ऐना ऐन इब्न तैयहान, ऐना ज़ुश्शहादतैन। तो यहां पर क्या समझ में आ रहा है कि ये वो लोग हैं कि ये से जुमला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तन्हा नहीं है लिका अल्लाह वाला, कि तुम हमारे साथ चलो, हमारे साथ रास्ता तय करो, हम तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने भी अपने मुखलसीन असहाब के लिए क्या बयान फरमाया, उन्होंने अल्लाह से और वल्लाही, ये कसम कौन खा रहा है, वल्लाही इमाम अली कसम खा रहे हैं, खुदा की कसम उन्होंने अल्लाह से मुलाकात की। और इस दुनिया में रहने से सिवाय गुस्से के घूंट पीना और गंदला पानी पीना यहाँ की हयात नापाक का, उसके अलावा कुछ नहीं है जो इस दुनिया में जाता है और इसके पीछे पड़ता है। और एक आयत मैं आपको सुनाऊं और मैं अपनी गुफ्तगू को मसाइब की तरफ ले जाऊं, कि वो एक आयत जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बारहा पढ़ी है करबला में और मुतअद्दिद शुहदा के ऊपर पढ़ी है। वो आयत कौन सी है? सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 23, मिनल मुमिनीन रिजालुन, मुमिनीन में से ऐसे रिजाल हैं, ऐसे मर्द, सदकू मा आहदुल्लाह अलैहि, कि उन्होंने अल्लाह से जो अहद किया था उसको सच कर दिखाया, अपने अमल से, अपनी शहादत से, अपनी जान की कुर्बानी से उस अहद को सच्चा साबित कर दिखाया। फमिनहुम मन कवा नहबहु, उनमें से कुछ हैं जो अपना वादा पूरा करके आगे चले गए, وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, और कुछ हैं जो हालत इंतजार। وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا, और जो हालत इंतजार में हैं उनमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई है, उनकी इस्तेकामत में कोई कमी नहीं वाकई हुई, वो पूरी इस्तेकामत और दयानत के साथ अपनी वादागाह तक पहुंचने के इंतजार। ये मुतअद्दिद बार इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने रुफका और शुहदा के ऊपर इस आयत की तिलावत की। यह है कैटेगरी नंबर 6। अब हमें फैसला करना है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये करबला का जो पूरा कैनवस है ये जो पूरा एक निजाम, एक सिलसिला बनता है, ये हमें दावत देता है कि हम इसमें अपने मकाम को तलाश करें। और जैसा मैंने कहा आपसे कि उबैदुल्ला इब्ने हुर और वहाक इब्ने अब्दुल्ला जैसी मिसालें मौजूद हैं, हमको दूर से दूसरे को देखकर अजीब लगता है, लेकिन आप गौर करेंगे ये सब मिसालें मौजूद हैं कि हम इमाम की हिमायत में एक हद से आगे नहीं जाते। हम वो नहीं हैं कि जो अपना सब कुछ इमाम अलैहिस्सलाम के सामने, या कम से कम अभी हम कहें हमारे पास एक बहाना है कि इमाम मौजूद नहीं, तो कम से कम जितना हम दीन की खिदमत में हदिया कर सकते हैं उतना करते हैं। यह सवाल अपने आप से करें, जितना खुदा के लिए कर सकते हैं करते हैं उतना। तो अजीजों, इस चीज को हमें हमेशा याद रखना है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने तलब नुसरत की है, हमें अपनी तरफ बुलाया है, और इसमें दीन की तरक्की और इस्तेहकाम भी है, और इसमें हमारी फलाह भी है। कि इमाम का मकसद हमें अपने पास बुलाने का ये नहीं है कि वो हमसे, एक इमाम खुदाए गनी मुतलक की सिफात का जलवा है। इमाम हकीकतन अपनी जात के लिए हमारे मोहताज नहीं है, लेकिन वो हमें कहते हैं कि मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हें बुलंद कर सकूं। तो अब हम इस सदा पर कितना लब्बैक कहते हैं, कितना कबूल करते हैं, अब ये हमारी मर्जी है। मैंने ये तमाम इसीलिए आपके सामने अर्ज कर दिया, खुलासा जिस हद तक मुमकिन था, और एक फैसला अब हम करें कि हम कहाँ पर हैं और किधर जाना चाहते हैं, किन लोगों के साथ अपनी आखिरी मंजिल को करार देना चाहते हैं। एक सलावात मोहम्मद वाद। इंशाल्लाह कल से हम जिस गुफ्तगू का आगाज करेंगे वो तीसरा पहलू इमाम अलैहिस्सलाम के किरदार अजीज और अजीम का, और वो बहुत हसीन पहलू है कि जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, इस हवाले से मैं इंशाल्लाह आपके सामने इमाम के कलिमात रखूंगा, कि जहां से हमको ये नजर आता है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने मौत की मानवियत को मुनकलिब कर दिया, मौत को एक नई मानवियत अता की है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे कल, और फिर जितना भी ये गुफ्तगू रही। मौत के हवाले से जैसे एक जुमला मैंने आपको आप इमाम के उस खुतबे में भी सुनाया था कि जिसमें आपने फरमाया था मक्के से निकलते वक्त के, मौत जो है वो खींच दी गई है, उसका खत है औलाद आदम पर। जिस तरीके से एक नौजवान लड़की के गले में लिपटे हुए गुलूबंद का नक्श उसकी गर्दन पे आ जाता है, ये मौत का तारुफ है। ये मौत ऐसी है, यानी क्या मतलब है, मौत इंसान के गले का हार है जैसे गुलूबंद होता है। मौत जब इंसान पर आ जाती है तो तुम्हारे लिए तकलीफ दे नहीं है। अब ये जो इमाम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं ना कि वो निशान जो गले पे आ जाता है एक नौजवान लड़की के, वो निशान एक तरीके से हुस्न का आईनादार होता है, न कि किसी खराबी का। मौत थोड़ी सी तकलीफ देती है, और मौत तुम्हारे हुस्न में इजाफा करती है, और मौत तुम्हारे गले का हार है। और इंशाअल्लाह इस गुफ्तगू को आगे, और शब आशूर जब इमाम अलैहिस्सलाम अपने असहाब व अंसार व आवान से अपनी बैअत को उठा रहे थे, और इमाम के उस पेशकश के नतीजे में और जवाब में एक एक सहाबी और आपके अहले बैत में से सबसे पहले हजरत अब्बास अलमदार खड़े होते हैं, फिर उसके बाद मुस्लिम इब्ने औसजा हैं, जुहैर इब्ने कैन हैं, इन सब लोगों ने बेहतरीन गुफ्तगू की, امام علیہ السلام کو اپنی جانساری اور فداکاری کا یقین دلایا، اور جب یہ سب کچھ ہو گیا اور بات تمام ہو گئی اور حضرات اپنے اپنے خیموں میں واپس جانے لگے، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام جب اس مجلس سے باہر کی طرف جا رہے تھے تو آپ نے خیمے کے دروازے کے قریب ایک نوخیز نو عمر جوان کو کھڑے ہوئے دیکھا، اور اس جوان نے آپ سے اس جوان کو دیکھ کر امام حسین علیہ السلام نے اس سے ایک عجیب سوال کیا اور پوچھتے ہیں کہ اے بیٹا قاسم، تمہیں موت کیسی لگتی ہے؟ اور جو جواب ہے وہ بھی ہیرے جواہرات میں تولے جانے کے قابل ہے کہ جب قاسم جواب دیتے ہیں احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیریں، یہ جواب بیک وقت بچکانا بھی ہے اور عارفانہ بھی ہے، اس کے اندر انتہائی گہری معرفت بھی پنہا ہے اور اس لڑکپن کی معصومیت بھی جھلک رہی ہے کہ موت میری نظر میں شہد سے زیادہ شیریں. امام علیہ السلام سے پھر اس بچے نے، اس لڑکے نے سوال کیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اے چچا جان، کیا کل سب لوگ شہید ہو جائیں گے؟ کیا کل سب لوگ موت کے حوالے ہو جائیں گے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں بیٹا، بس یہ سمجھ لو کہ مردوں میں سوائے علی، امام علی، امام سجاد کے اور کوئی باقی نہ رہے گا. قاسم اس بات کو سن کر سمجھ گئے کہ ہمارے قافلے میں جتنے بچے ہیں، حتیٰ یہ کہ وہ بچے جو ابھی ماؤں کی گود میں ہیں، ان کی بھی شہادت اس موقع پر لکھی ہوئی ہے. روز عاشور آتا ہے، ایک ایک کر کے امام علیہ السلام کے رفقاء، جانسار، اصحاب قربان ہوتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے اہل بیت کی باری آتی ہے، اور اپنے اہل بیت اور خاندان والوں میں امام حسین علیہ السلام فقط علی اکبر کے اور کسی کو بھی نہیں کہتے کہ آگے جاؤ اور اپنی زندگی کا نذرانہ راہ خدا میں پیش کرو. امام علیہ السلام کے اخلاق کی یہ بزرگی ہے کہ اپنے فرزند کو تو آگے کیا لیکن باقی ہر ایک کو روکتے ہیں. قاسم کئی مرتبہ امام علیہ السلام سے، اپنے چچا سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت لینے کے لیے آتے ہیں. امام حسین علیہ السلام مختلف راہوں سے بھتیجے کو واپس لوٹا دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ تم میرے بھائی کی نشانی ہو، کبھی کہتے ہیں کہ تمہاری شکل دیکھ کر مجھے اپنے بھائی کی یاد آتی ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ اے قاسم، تم ابھی بہت کم سن ہو، تم کس طریقے سے میدان جنگ میں جا کر جہاد کرو گے؟ بالآخر جب امام علیہ السلام نے کئی مرتبہ قاسم کی پیشکش کو قبول نہ کیا تو پھر قاسم اپنی والدہ ماجدہ کے پاس جاتے ہیں، جناب ام فروہ، اور بی بی ام فروہ قاسم کا ہاتھ تھام کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، اور شاید ایک عجیب جملہ انہوں نے کہا ہوگا امام سے کہ جس کے بعد امام انکار نہ کر سکے کہ اے حسین، اگر آج حسن زندہ ہوتے تو اس قربانی کو خود آپ کی خدمت میں پیش کرتے، لیکن شاید ایک بیوہ خاتون کی طرف سے کی جانے والی پیشکش آپ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام تڑپ اٹھتے ہیں، قاسم کو اپنے ہاتھوں سے سجاتے ہیں اور گھوڑے پر سوار کراتے ہیں. قاسم اس وقت 13 یا 14 سال کا سن ہے، اور ان کے لیے اس طریقے سے میدان جنگ میں جانا اسلحے کو لگانا یہ خود ایک عجوبہ روزگار بات تھی۔ میدان میں تشریف لے جاتے ہیں، جس حد تک ممکن ہو بہترین داد شجاعت دیتے ہیں۔ جب ایک ملعون نے، ایک شقی نے آپ کے اوپر وار کیا اور قاسم گھوڑے سے زمین پر تشریف لاتے ہیں اور فریاد بلند کرتے ہیں کہ اے چچا میری مدد کو پہنچے، امام حسین علیہ السلام کے سماعت میں جب یہ آواز پہنچتی ہے تو والہانہ وار قاسم کی طرف بڑھتے ہیں۔ روایت کے یہ جملے ہیں کہ وہ ملعون، وہ شقی جو قاسم کے سر پہ تھا، ان کو قتل کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام اس کو للکارتے ہیں، اس پر وار کرتے ہیں، اور وہ ملعون واصل جہنم ہوتا ہے، اپنی مدد کے لیے اپنے لشکر والوں کو پکارتا ہے۔ راوی یہ کہتا ہے کہ ہر طرف سے گھوڑے بڑھے، ہر طرف سے سواروں کی یلغار ہوئی اور اتنی زیادہ گرد اٹھ گئی کہ کچھ نظر نہ آتا تھا۔ جب یہ گرد تھمی تو نظر یہ آتا ہے کہ قاسم زمین پر ہیں، امام حسین علیہ السلام سرحانے بیٹھ کر شانہ ہلا رہے ہیں اور ایک عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے قاسم، تمہارے چچا پر یہ بات بہت سخت ہے کہ میں تمہیں بلاتا اور پکارتا ہوں اور تم میری صدا کا جواب نہیں دیتے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا پروردگار عالمین، تمام سامعین و حاضرین کی دنیا اور آخرت کی پریشانیوں اور مشکلات کا بہترین حل عنایت فرمائیں۔ آپ سب حضرات کو عافیت، سلامتی و برکت نصیب فرمائیں۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی مؤمنین و مؤمنات کسی بھی قسم کی پریشانی اور مشکل سے دوچار ہیں، خدا ان کی حفاظت فرمائیں۔ خاص طور سے افغانستان میں جو حالات اچانک تبدیل ہوئے ہیں، خدا اس قرب و جوار میں تمام مؤمنین و مؤمنات اور خصوصیت کے ساتھ ہماری عزاداری کی حفاظت فرمائیں۔ پروردگار عالمین، کربلا کی رونقوں کو جلد از جلد بحال کرے۔ ابھی بھی انشاءاللہ یقیناً مومنین حاضر ہوں گے، لیکن جو رونق تھی عاشور اور کربلا کی، جو اس وبا کی وجہ سے متاثر ہوئی، خدا اس کو یقیناً جلد از جلد واپس لائے۔ رب العالمین کعبے اور بقیع کو اور مسجد نبوی کو جلد از جلد آزادی اور رہائی نصیب فرمائے، اور آپ تمام حضرات کی دنیاوی اور اخروی حاجات کو بر لائے۔ والسلام علیکم وفضل